श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय हो। तो जब भगवान जैसे इस विश्व को छोड़कर जा रहे थे ना, तो उनको पता था कि सब लोग विरह में जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। तो उन्होंने बज्रनाभ को कहा कि आप अभी मेरे 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 जहाँ जहाँ लीला किया वृंदावन में, उस स्थान को आप संवारो अच्छी तरह से, उसे विग्रह लगा दो मेरे अलग जगह पर जहाँ जहाँ मैंने लीला किया है, और मेरे स्थान का जो अस्तित्व है ना वो उसको बनाए रखो आप, मेंटेन नाइसली। तो बज्रनाभ ने 3 विग्रह बनाए, एक का नाम मदन मोहन जी, एक का गोविंद जी, एक का गोपीनाथ जी। एक विग्रह के चरण कमल भगवान जैसे, एक विग्रह के छाती भगवान जैसी, एक विग्रह के मुख भगवान जैसा। तो गोपीनाथ जी जो है वो भगवान का मुख जो है वो उनके जैसा ही था, उनका नाम गोपीनाथ रखा गया। और बज्रनाथ जी ने वृंदावन में विशिष्ट स्थानों पर इनको स्थापन किया। मदन मोहन जी को जमुना किनारे काले घाट के पास किया, गोविंद देव को योग पीठ पे किया, गोपीनाथ जी को यमुना किनारे बंसी भट्ट के यहाँ पर किया, जहाँ भगवान ने रास रचाया था। गोपीनाथ जी का विशेष लीला जो है वो रास लीला है। तो बंसी भट्ट के पास उनका विग्रह स्थापन किया, और बज्रनाभ ने बहुत सुंदर कार्य किया। ब्रज को संवारा उन्होंने, ब्रज का जीर्णोद्धार किया, जीर्णोद्धार तो नहीं किया उन्होंने, स्थापन किया पहले उन्होंने ब्रज को, लीला स्थलियों के साथ में वनों को संवारा। फिर कुछ समय बाद भगवान की इच्छा से वो लुप्त हो गया सब, और लुप्त हो गया तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट भी करते हैं अपने आप को। मदन मोहन जी ने अपने आप को अद्वैत आचार्य के सामने प्रकट करवाया कालिया घाट के पास में। गोविंद जी को मैंने बताया आपको, रूप गोस्वामी ने प्रकट करवाया टील से, योग पीठ के अंदर से, है ना, बताया ना, सुबह आज ही बताया था, कल बताया था, हाँ रे आज ही बताया था ना, हाँ रे आज ही बताया था। तो गोपीनाथ जी विलुप्त हो गए थे। तो वो एक भक्त आए, महाप्रभु चैतन्य के बड़े बड़े गंभीर भक्त थे वो, वेरी सीरियस डिवोटी। उनका नाम था मधु पंडित, मधु पंडित महाशोय, बंगाल से आए थे, वहां भगवान की इच्छा से आए थे। और इतने भगवान के लिए वो विरह में थे, इतने भगवान की भावना में फंसे, मतलब क्या कहते हैं, मुग्ध थे, मग्न थे, कि सब जगह केवल भाव भाव रूप में पुकार रहे हैं, कहो कोथाय कृष्णा कोथाय कृष्णा, केवल रो रहे हैं। मतलब एक अवस्था होती शरीर की, भाई भूख लग रही है, अभी कितने बजे प्रसाद कब आएगा, एक एक अवस्था है। दूसरी अवस्था मन की है, उसमें कोई भूख प्यास लगती नहीं है, वो तो उसके परे जा चुका है। और तीसरी अवस्था होती है दिव्य अवस्था, उसमें किस चीज का भान नहीं होता है, जी रहे नहीं जा रहे समझ में नहीं आता है, भाव इतना तीव्र है। तो ये इस तीव्र भाव में तुरिया अवस्था कहते हैं उसको, त्रिगुण के परे होती है अवस्था, वो त्रिगुणातीत अवस्था होती है, उसमें वो पुकार रहे कोथाय कृष्णा कोथाय कृष्णा, कभी टकरा रहे पेड़ से, कभी गिर रहे हैं, कभी जल में गिर रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी बेहोश हो रहे हैं, कभी उनको संवारना भी मुश्किल हो गया था, इतने भाव में थे वो। और ढूंढ रहे गोपीनाथ को, एक दिन जमुना किनारे जाते 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 पुकारते पुकारते जमीन की तरह चलते रहे और पानी में गिर गए जमुना जी के, डूबने लगे, फिर भी पूछ रहे कोथा है कृष्णा कुठे हो कुठे आ तुम्हें, वेर आर यू कृष्णा, कहाँ हो आप। तो गोपीनाथ जी को भी रहा नहीं गया, गोपीनाथ जी जमुना जी के जल के अंदर प्रकट हो गए, और डूबते हुए मधु पंडित को पकड़ा उन्होंने, और उसको प्रेम से गोद में लेकर बाहर आए वो किनारे, बंसी भट्ट के जगह पर जमुना किनारे बाहर आए और रखा उनको, और प्रेम से उनको होश में लाया उन्होंने। होश में लाया तो मधु पंडित ने दर्शन किया गोपीनाथ जी का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मधु पंडित ने दर्शन किया, तो मधु पंडित ने प्रणाम किया उनको, भाव विभोर हो गए, गदगद हो गए भगवान को देखकर, भगवान की स्तुति किया उन्होंने। भगवान ने उनको पूछा क्या चाहते हो आप, तो मधु पंडित कहते हैं कि आप ना जिस रूप में दर्शन दे रहे हो ना, वैसे ही आप यहाँ पर परमानेंट निवास स्थापन करो। तो वही गोपीनाथ जी विग्रह बन गए, जो प्रत्यक्ष थे वो विग्रह हो गए, और उसको उन्होंने वहां पर रखा जमुना किनारे, जो गोपीनाथ जी का मंदिर वृंदावन में है। तो गोपीनाथ जी का विशेष हमारे जीवन में क्या अर्थ है, कि जो सेवा करते हैं ना आप लोग, सब लोग, हम लोग सब लोग मिलकर सेवा करते, प्रयास करते हैं सेवा करने का, वो सेवा में परिपूर्णता गोपीनाथ जी देते हैं। इसलिए हम लोग गोपीनाथ जी को प्रणाम करते हैं और सेवा की परिपूर्णता, परफेक्शन। अभी हमारी सेवा परफेक्ट नहीं है, कोई गलती करते हैं, कोई चूक जाते हैं, हम लोग कभी आलस्य करते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी गैर जिम्मेदार बन जाते हैं, बहुत सारा कष्ट होता है सेवा में। तो गोपीनाथ जी हमको उनका, अगर आपको श्रद्धा से आप उनका पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, याद करेंगे, तो आपको वो उनकी कृपा से सेवा की परिपूर्णता, परफेक्शन प्राप्त हो जाएगा। और वो गोपीनाथ है ना, रासलीला करने वाले। फिर वो एक बात वहां पर उन्होंने, गोस्वामी ने बताई, पुजारी ने, और मैंने कहा कि ये बताऊंगा बाद में आपको, वो क्या था, वो दो देवियों के बारे में बता रहे थे, जाह्नवा देवी है ना, गोपीनाथ की विशेष भक्त थी वो। कौन थी वो? अनंग मंजरी। अनंग मंजरी कौन है? अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है, विश्वानु महाराज और कीर्ति मैया के तीसरी संतान है वो। पहले संतान कौन है? कौन है? श्रीदामा, कृष्ण के सबसे प्रिय सखा श्रीदामा, राधा रानी के बड़े भाई हैं वो। फिर राधा रानी है, उसके बाद में तीसरी अनंग मंजरी है। लेकिन अनंग मंजरी की विशेषता यह है कि वो बलराम जी के अवतार हैं। बलराम जी स्वयं अनंग मंजरी के रूप में अवतारित लिए, अवतार हो गया उनका। वो माधुर्य मतलब गोपी भाव में भी भगवान की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोपी रूप में राधा रानी के घर में जन्म लिया। तो वो अनंग मंजरी जो कृष्ण के समय अनंग मंजरी थी, वो ललिता देवी की विशेष सेविका थी। राधा रानी की बहन होने पर भी प्रत्यक्ष राधा रानी की सेवा नहीं कर रही है, वो ललिता देवी के निर्देश में सेवा कर रही है, सेविका बनकर सेवा कर रही है। अरे तुम लोग कौन हो, मैं तो उनकी खास बहन हूँ, मैं तो घर की हूँ, ये अहंकार नहीं उसके अंदर। जो राधा रानी के प्रधान सेविका है ललिता, उसके निर्देश के अंदर वो सेवा करती है अनंग मंजरी। उसके अंदर, उसके पास भी एक कोटि गोपियाँ हैं जो ललिता देवी के सेवा में रहती है, और दो और मंजरियाँ हैं, एक अनंग मंजरी हो गई, दो, एक है रूप मंजरी और एक लबंग मंजरी। रूप मंजरी रूप गोस्वामी बनकर आए और लबंग मंजरी सनातन गोस्वामी बनकर आए, और अनंग मंजरी जाह्नवा देवी बनकर आई। आप जानते हैं कलयुग में श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं। हमारे कृष्णानंद प्रभु ने कितनी बार उनको बार बार आपको बताया, महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु, है ना, आप लोगों को परिचय हुआ ना उनका कि नहीं हुआ? इतने दिन प्रवचन किया, चार दिन तक महाप्रभु की यात्रा वृंदावन की। तो महाप्रभु कौन थे? स्वयं कृष्ण थे वो, लेकिन भक्त रूप में आए थे, और भक्त रूप में भक्ति कैसे की जाती है वो समझाने के लिए आए थे वो। इसलिए उनकी ज़्यादा अच्छा भक्त बनने का शिक्षा कौन दे सकता है, तो वो खुद भक्त बनकर आए बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए। और बलराम भी उनके साथ में आए, कौन बनकर आए? नित्यानंद प्रभु। बोलो सब लोग बोलो, क्या बनकर आए? अरे उनका नाम भी उच्चारण करने से सब पाप भाग जाते हैं, बलराम जी के अवतार हैं। बोले नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु, गौरांगा गौरांगा नित्यानंदा। तो बलराम जब नित्यानंद प्रभु बनकर आए तो कुछ समय तक ब्रह्मचारी रहे, फिर चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिया जाओ विवाह करो। तुरंत गए अंबिका कालना, वहाँ पर सुबल सखा के अवतार गौरीदास पंडित, उनकी कन्या, उनको दो कन्या थी, एक जाह्नवा देवी और दूसरी वसुधा देवी, एक रेवती का अवतार और एक वारुणी का अवतार। बलराम की भी दो पत्नियां थी, वारुणी और रेवती, वरुण देव की कन्या वारुणी और रेवत राजा की कन्या रेवती। तो ये रेवती जाह्नवा देवी के रूप में आई, वो अनंग मंजरी भी है और रेवती भी है, दोनों दोनों का अवतार हुआ जाह्नवा देवी के रूप में। उस जाह्नवा देवी के साथ में नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ। उस विवाह में, अभी बहुत लंबा और सुंदर प्रसंग है लेकिन आपको छोटा बताते हैं, उस विवाह हो गया उनका, और विवाह में दुल्हन दूल्हा को बैठकर भोजन करा रहे थे फाइनल पंगत में। तो वसुधा देवी जो है ना, जो जाह्नवा देवी की छोटी बहन है, वो उनको अर्चना देवी, वो उनको परोस रही है भोजन। हाँ, अभी कुछ ही देर भोजन आने वाला है, चिंता मत करना, आ जाएगा भोजन। तो वसुंधरा देवी भोजन कर रही है, तो उतने में अभी कैसा रिवाज है कि सब लोग पल्लू वल्लू लेके भोजन करवाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भी चलेगा गिरेगा तो भी नहीं, पल्लू सब बाल ढके रहें, और परोस रही हैं, उतने में वो पल्लू जो है ना वो पीछे जाता है, समझ में आपका है? तो आपको भी तुरंत ठीक करना है उसको, लेकिन सेवा भी छोड़नी नहीं है, तो कैसे करेंगे बताओ? आपके लिए पजल है ये, पजल। सेवा भी बंद नहीं करना है और वो जो पल्लू है उसको भी संवारना है। तो वो वसुधा देवी के कंधे में से दो हाथ उत्पन्न हो गए और दो हाथ पीछे गए, ठीक से किया उसको और दो हाथ अदृश्य हो गए और दो हाथ से सेवा चलती रही, समझे ना? आगे आगे जाके परोस रहे वो और दो हाथ पीछे से पल्लू सवार रहे हैं। कैसा लगा आपको प्रेमानंद जी? क्या किया वसुधा देवी ने? सुनो आप, सुनो। तो ये जो लीला है ना वो नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं, कितनी सेवा में मग्न है। इसको एक मिनट में ऐसा नहीं कि पात्र रख दिया फिर ठीक किया फिर पात्र लेकर वापस चालू किया, ऐसा नहीं। उतना उसको व्यवधान करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है उसको। तो वसुधा देवी के कंधे से दो हाथ प्रकट हो गए, ये सब नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं। ये देखकर वो इतना प्रसन्न हो गए, तुरंत उसका हाथ पकड़ा और पिताजी से कहा मुझे इससे भी विवाह करना है, और तुरंत उसके साथ विवाह किया गया उसका। तो शादी तो थी बड़ी बहन की, लेकिन बारात में सब दोनों चले गए पत्नी बनकर। तो वो जानवा देवी जब तक नित्यानंद प्रभु थे तब तक तो केवल वो घर घर से संभाल रही थी। जब नित्यानंद प्रभु भगवान के बाद अंतर्धान हो गए, अपनी लीला को समाप्त करके धाम में चले गए, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर जानवा देवी गौड़ीय वैष्णवों की प्रमुख बन गई। और वो उसके पहले तो बहुत लोग थे ना, चैतन्य महाप्रभु थे, नित्यानंद प्रभु थे, अद्वैत आचार्य थे, गदाधर पंडित थे, श्रीवास पंडित थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, सब एक एक करके अंतर्धान हो गए। उसके बाद जानवा देवी वैष्णवों की लीडर बनी, नेता। और एक ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर नाम का, उसके अंदर उतने इतने उनकी लीलाओं का वर्णन है, इतना सुंदर वर्णन है कि आप गदगद हो जाएंगे उसको पढ़कर। इतनी पावरफुल थी वो कि जब चलती थी ना रास्ते से तो जो जो व्यक्ति को देखती थी ना वो, जैसे आपको देखा, आप खड़े हैं बैठ गए, जिनके ऊपर उनकी नज़र पड़ती थी वो प्रेम और भक्ति से भाव विभोर हो जाते थे, और बहुत सारे लोग उनको दर्शन करते ही बेहोश हो जाते थे प्रेम से। उनके अंदर प्रेम का आवेश हुआ करता था, जो उनके अंदर था वो केवल नज़रों के माध्यम से लोगों के आत्मा में प्रवेश करके उनको वो दिव्य आनंद दिलाती थी वो। ऐसे उन्होंने जहाँ जहाँ यात्रा किया वहाँ सब लोगों को उन्होंने दिव्य प्रेम प्रदान किया। तो वृंदावन में आई बीच में गोस्वामियों से मिलने के लिए, सबके साथ मीटिंग किया उन्होंने, राधा कुंड गई, रघुनाथ दास गोस्वामी को मिली, फिर वृंदावन आई, और ना हर एक मंदिर में उन्होंने भोजन बनाया और हजारों भक्तों को खिलाया। आज राधा मदन मोहन जी में, कल गोविंद जी में, फिर गोपीनाथ में, ऐसे उन्होंने प्रचंड सेवा किया वृंदावन में। सबको माँ की तरह प्रेम दिया उन्होंने, इतने बड़े गोस्वामियों को, जो हमारे क्या कहते हैं हमारे आदरणीय गोस्वामी रूप गोस्वामी सर, इन सबको उन्होंने इतना प्रेम दिया माँ की तरह। तो उनको गोपीनाथ जी ने अपने बाजू में स्थान दिया। आज तक के पूरे इतिहास में कोई जीवित व्यक्ति की मूर्ति नहीं बनाई गई पूजा करने के लिए, लेकिन गोपीनाथ जी की स्वयं इच्छा थी कि जानवा देवी मेरे साथ में बसे सखी के रूप में। तो राधा रानी ने भी जानवा देवी का इतना आदर किया, राधा रानी ने भी अपना स्थान छोड़ दिया, बायां स्थान जो महत्वपूर्ण स्थान है वो उन्होंने जानवा देवी को दिया, और खुद राय दाहिने स्थान पे खड़ी हो गई वो। तो गोपीनाथ जी का विशेष दर्शन है पूरे विश्व में, केवल गोपीनाथ जी मंदिर में, राधा रानी दाहिने साइड पे, जानवा देवी बाएं साइड पे। और जानवा देवी इस विश्व में जीवित थी, अभी भी लीला कर रही है, लोगों से मिल रही है, प्रचार कर रही है, लोगों को प्रेरणा दे रही है, और गोपीनाथ जी मंदिर में उनके विग्रह की पूजा भी की जा रही है। अंतिम समय पे जानवा देवी वापस गोपीनाथ जी के मंदिर में आई और वो अपने ही विग्रह में लुप्त हो गई, अंतर्धान हो गई, अपने लीला को समाप्त करके जानवा देवी अपने विग्रह में लुप्त हो गई गोपीनाथ जी के लिए। उनका पूरा जीवन गोपीनाथ जी की सेवा में समर्पित था, यहाँ तक कि गोपीनाथ जी की राधा रानी की मूर्ति भी उन्होंने ही बंगाल से बनवा के लाई थी, उनकी दया से राधा रानी का विग्रह प्रकट हो गया। और राधा रानी प्रकट होके बाजू में हो गई और दूसरे विग्रह में, दो विग्रह बना के लाए थे, तो एक राधा रानी में उसमें प्रवेश कर गई और दूसरा विग्रह में इनके नाम से पूजा की गई और यही प्रवेश कर गई बाद में उसमें। ऐसे आपको अगर कभी आगे रुचि उत्पन्न होगी तो आप जरूर भक्ति रत्नाकर ग्रंथ पढ़िए, उसके अंदर जानवा देवी की प्रचंड लीलाओं का वर्णन है, बहुत ही सुंदर। श्री जानवा देवी की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की।